And make rules. Doctor, thank you.
पहले डॉक्टर शर्मा सर मेरे केबिन में आए और कहा कि ये प्रोग्राम आयोजित कर दिया है और मैंने आपकी टॉप भी रख दी है। तो मैंने सोचा तो खाली चार दिन है मेरे पास, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। तो पर उन्होंने कहा मैंने तो लिख दिया है एब्जॉर्बिंग टॉप होगा डॉक्टर सचिन। तो मैंने कहा आपने कहा है जरूर करेंगे। तो जैसे कि आप सबको ज्ञात है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही जीवन है और अगर जान है तो जहान है। अगर हम स्वास्थ्य जीवन हमारा है तो ही हम एक स्वस्थ जीवन से हमारा जीवन जो है उसमें हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन की सफलता का जो आधार स्तंभ है वो है स्वास्थ्य। तो आज सबको जैसे ज्ञात है आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है और जैसे कि डॉक्टर शर्मा सर ने कहा विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्षगांठ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य था वो था कि विश्व के जितने देश हैं वो सब एकत्र आए और परस्पर सहयोग से कुछ ऐसे स्वास्थ्य के मानक स्थापन करें और उनको विकसित करें जिससे कि मानव जाति का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिससे जागृत हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो परिकल्पना है वो साकार हो। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कौन से वो व्यक्ति होंगे जिनके मन में पहली बार ये संकल्प आया होगा कि सारे विश्व के स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ करना है और एक ऐसी संगठन की स्थापना करना है कि जिससे विश्व भर में जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए, उनका निवारण किया जाए। तो हर साल एक थीम ली जाती है, एक विषय वस्तु लिया जाता है, एक विषय को चुना जाता है और सारे साल उसके ऊपर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा परिचर्चा गोष्ठी आयोजित की जाती है। और इस बार जैसे ये कुछ थीम्स है WHO के, जैसे कभी तो स्वास्थ्य मातृत्व दिया जाता है, तो कभी सुरक्षित रास्ते, तो कभी पोलियो के ऊपर, तो कभी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। और 2013 में हमने यहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया था जिसका थीम था हाइपरटेंशन। तो हर साल की तरह इस बार भी WHO ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम लिया है और जिसका नाम है फूड सेफ्टी। और ये केवल फूड सेफ्टी, जैसे कहा कि केवल हमारे थाली पर जो भोजन आता है वहां से शुरुआत नहीं होती, पर इसकी शुरुआत होती है खेतों और खलिहानों से। तो हम देखते हैं ये जो जर्नी है हमारी फॉर्म से लेकर तो प्लेट तक, इस बीच क्या क्या होता है, ये जो खाद्य श्रृंखला है इसमें बहुत सारी बातें आती है और किसी भी ये जो श्रृंखला इसमें कहीं पर भी कोई भी अगर बाधा हो कोई भी असुरक्षा का कोई भी बात अगर आती है तो उससे सीधा हमारी सेहत पर प्रभावित होते हैं। हम सुनते हैं सीधा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से।
It will be here that we are going to launch on the 7th of April, the World Health Day, on the theme of food safety. We are putting in spotlight many actors working on the food chain to emphasize their responsibility and important roles. Food safety is important, nutrition is important, food security is important. They are all linked to each other, and it requires whole of government approach, multi-sectoral collaboration, engaging the civil society, academics, the industry, as well as governments, of course, you know, first and foremost.
तो हम फिर से चलते हैं अपने जो मुख्य टॉपिक है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट मेक फूड सेफ। आप सबको पता है कि भारत में एक अभियान चालू है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है वो है स्वच्छ भारत बाय 2019, और लक्ष्य रखा है 2 अक्टूबर तक, जो कि महात्मा गांधी की 150th जयंती है। और इस अभियान के तहत बहुत सारी बातें चालू हुई है, जिसमें कि स्वच्छ स्कूल, स्वच्छ मैदान, स्वच्छ पुस्तकालय, और मुख्य जो इसमें लिया है वो है शौचालय। और इसी के तहत एक और बात है जो महत्वपूर्ण है, वो है स्वच्छ रसोई। तो हमारा ये जो थीम है, ये जो विषय वस्तु है, ये जो मूल विषय है इस बात का, इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इस अभियान से बहुत ही ज्यादा संबंध रखता है। और ये भारत के लिए
प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। इसका के 4 मंत्रालय जनकर काम करेगा। फॉर्म टू प्लेट टीम का नाम होगा स्वास्थ्य, कृषि, और उपभोक्ता मंत्रालय जनकर काम करेंगे। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 200 तरह की बीमारियां प्रदूषण खाने की वजह से हो रही है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थीम भी फूड सेफ्टी ही है, और इसी के तहत ये मुहिम एक तरह से शुरू की गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रदूषित खाना खाने से आपको भी पता है कितनी तरह की बीमारियां होती है, और पाया गया है कि 200 तरह की बीमारियां इससे होती है। अनु जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनु, वाकई एक बेहद अच्छी और बड़ी पहल, और उम्मीद की जाएगी कि अगर ये वाकई कारगर होती है तो कई तरह की बीमारियों से निपटा जा सकेगा।
लेकिन इस बार स्पेशली इनिशिएटिव किया गया, प्रेजेंट में लॉन्च किया गया है, 4 मिनिस्ट्री को इकट्ठा किया गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है बता रहे हैं किस तरह से जो फूड सेफ्टी की मुहिम है वो जारी करेंगे, किस तरह से मेजरमेंट हर मिनिस्ट्री अपने तरफ से लेगा, जो प्रोग्राम चल रहा है की साइंस टीम क्या होगी, फार्मिंग से लेकर किस तरह से जब आम आदमी सेफ में मुआवजा तो फूड बिल्कुल सेफ होना चाहिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो फार्मिंग में पेस्टिसाइड की मात्रा हो, एग्रीकल्चर में कंज्यूमर के पास पहुंचती है, उनकी पैकेजिंग होती है, किस तरह से रिटेलर उसको प्रिजर्व करता है, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सहन की जाती है, किस तरह से जो ग्रुप ऑफ बॉडीज है यहाँ पर जहाँ से जो इन्फेक्शन चलता है, जो वायरल बैक्टीरिया की तमाम पांच की जहाँ से कंटेमिनेशन हो रहा है फूड का, उसको कैसे दूर किया जाए, चारों मिनिस्ट्री के अंदर आता है, चारों मिनिस्ट्री इस पैनल पर बैठी है, सजेशन का बात जारी है, और किस तरह से इसको कंबाइन करके एफर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, और एक मुहिम चली चलाई जाएगी एक साल तक, उसकी पूरी चर्चा हो रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों मिनिस्ट्री ने मिलकर इस तरह का स्टेप उठाया है, और जैसा कि मेडिकली आपको पता ही है कि वाटर बोर्न और फूड बोर्न जो डिजीजेज है बहुत सारा है, और डायरिया जो है उस पर विशेष चर्चा यहाँ पे हुई है कि डायरिया जो है बहुत सारा एक कॉमन कॉज है बच्चों की डेथ का, उसके बारे में यहाँ पे बकाया से चर्चा हुई है। अगर हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं
आपने देखा कि अन्न जनित जो बीमारियां हैं वो केवल एक दो नहीं है, यहाँ बताया गया है कि लगभग 200 से भी अधिक बीमारियां इस वजह से होती है। उसमें दस्त, पेचिस छोड़कर डायरिया, डिसेंट्री से लेकर तो कैंसर तक तक ये बीमारियां हो सकती हैं। और ये बहुत ही सुंदर पहल भारत सरकार की ओर से भी ली गई है इस बारे में, जहां कि आपने देखा चारों ही मिनिस्ट्री एक साथ आकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये आज का जो विषय है, ये कुछ मुद्दे हैं जिसको हम देखेंगे। ये अन्न की सुरक्षा क्यों जरूरी है, अन्न की सुरक्षा अगर ना हो तो किस तरह की समस्याएं आ सकती है, अन्न की सुरक्षा में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और WHO इस बारे में क्या क्या कर रही है, और जो उपभोक्ता है जो कि इस खाद्य श्रृंखला में की अंतिम कड़ी है, उसे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सब बातें हम इस एक प्रेजेंटेशन में आज देखेंगे। सबसे पहले तो व्हाट आर द हेल्थ इंपैक्ट्स, जैसे हमने कहा कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको तो पता है फूड पॉइजनिंग काफी कॉमन है, और उसमें और एक चीज जो है वो है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ये कुपोषण का जो कुचक्र है, रोग और कुपोषण, और जो भी जो अति संवेदनशील जो वर्ग है, जो कि बच्चे हैं, वो इनसे सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं। और बहुत सारे जो केमिकल्स जो कि विषाणु या जीवाणु या परजीवी जो कि इस अन्न में होते हैं, उससे 200 से ज्यादा प्रकार की बीमारियां होती है। और एक अनुमान, एक जो आंकड़े जो WHO ने हमको दिए है, उससे ये पता चला है कि 20 लाख से ज्यादा लोग हर साल अन्न जनित रोगों के कारण उनकी मृत्यु होती है, और इसमें से सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। और दूसरे जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो रीजन है, जिसमें भारत एक मुख्य देश है, उसमें देखा गया कि इन 20 लाख में से 7 लाख तो केवल इस एरिया में है। तो जैसे मैं कह रहा था, ये जैसे कि कुचक्र है, जहां से कि कुपोषण और उसके बाद में बहुत सारी संक्रमक बीमारियां होती है, उसके बाद में वापस कुपोषण होता है। तो इस तरह से बहुत ये मतलब ये जो बच्चों का जो वर्ग है, इन ये इसके लिए बहुत मतलब बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए कुछ करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद में है कि व्हाट आर द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ अनसेफ फूड। अभी ये तो हमने देखा, फिर उसमें कुछ केमिकल्स अगर मिलाए जाए, अगर कुछ मिलावट होती है, तो उसके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। और आपको पता है कि जिस प्रकार का खाना आज मिलता है, जिसे जंक फूड हम कहते हैं, और उसमें बहुत सारे ट्रांस फैट होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जो कि गैर संक्रामक जो बीमारियां है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, या फिर कैंसर हो सकता है, या और उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सब का खतरा बना रहता है। तो ये और दूसरा एक महत्वपूर्ण है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो भी कि जो जो नए नए जो ड्रग्स आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो वायरसेस है और शक्तिशाली हो रहे हैं। तो इस तरह से अन्न सुरक्षित अन्न, अन्न की सुरक्षा और पोषण, ये बहुत ही जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में कुछ और तरह के इसके प्रभाव है असुरक्षित अन्न असुरक्षित खाद्य के, जैसे कि इकोनॉमिक, मतलब आपको पता है कि जितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे उतना ही उनका कॉस्ट बढ़ेगा, उतना ही इकोनॉमी उसमें खर्च होगी। तो ये जो एक बर्डन है हेल्थ केयर पर, ये एक बहुत बड़ा है। उसी तरह से वाणिज्य, उसी तरह से पर्यटन, इस सबको भी ये प्रभावित करता है। तो ये जो फुल स्पेक्ट्रम है, इस सबको हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसमें केवल उपभोक्ता ही नहीं, परंतु जो नीति निर्धारक है, जो पॉलिसी मेकर्स है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी इसकी जिम्मेवारी है कि इसको रोकने के लिए हमें क्या किया जाए। और दूसरा कि ये एक जगह बनने वाला अन्न, एक गांव में बनने वाला अन्न, एक गांव में कहो या एक क्षेत्र में कहो, वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाता है। तो ये जो वर्ल्ड फूड ट्रेड है, ये भी इस बात को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमारी जो अन्न की सुरक्षा है, वो केवल खाने के टेबल पे नहीं, परंतु उसकी शुरुआत होती है खेतों से। और इसमें जो कुछ भी बातें आती है, जैसे अन्न का उत्पादन हो, उत्पादन के बाद में उसका जो वितरण होता है वो, उसके बाद में उसका जो पैकिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है फूड का वो, और उसके बाद में फिर उसका खाना बनाना और फिर खाना खाना, तो ये बहुत सारी कड़ियां इसमें जुड़ी हुई है। हम एक करके एक थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में बहुत सारी चुनौतियां सामने आई है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड ट्रेड और स्ट्रीट फूड। अब ये जो स्ट्रीट फूड है, आप अगर मुंबई जाओ तो वहां की आप देखोगे दो प्रकार के वर्ग है। एक तो वर्ग वो है कि जो कि पिज्जा, हॉट डॉग और इस तरह का खाने वाला है, और दूसरा जो मुख्य वर्ग है वो कहते हैं कि आधी मुंबई जो है वो वड़ा पाव पे सर्वाइव करती है। तो वड़ा पाव, सेव पूरी, भेल पूरी, ये खाने वाला एक वक्त। तो ये जो स्ट्रीट फूड है इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। और नए नए बैक्टीरियाज जो आ रहे हैं, जो वातावरण में जो चेंज है, फूड एलर्जीज, नई नई एलर्जीज उसमें आती है, और जो मैंने कहा कि जंक फूड जिसमें कि अधिक मात्रा में सॉल्ट, शुगर और फैट होते हैं, तो ये सब हमारे सामने एक प्रकार की चुनौतियां हैं जिनको हमें देखना है। और एक मुख्य बात जो है वो जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक ऐसी चीज है कि कई लोगों के लिए तो ये जैसे कि एक वैज्ञानिक परिभाषा है, आम जनता सोचती है केवल वैज्ञानिकों के लिए, हमारा इससे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। परंतु ये अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखो तो सबसे बड़ा खतरा आज इस धरती को वो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराए उससे इतना नुकसान नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाए उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि नुकसान ग्लोबल वार्मिंग से होता है। और इसका भी एक मुख्य कारण है असुरक्षित अन्न, वो हम देखेंगे और थोड़ा आगे डिटेल में। तो ये सुरक्षित अन्न क्या है? एक तो पर्याप्त रूप में और सुरक्षित हमें ये खाद्य सामग्री मिले, ये हमारी एक बुनियादी आवश्यकता है। और एक जैसे कि आश्वासन कि जो हम अन्न खा रहे हैं वो सुरक्षित है। तो जैसे वापस यहाँ पर कहा हुआ है कहाँ से ये सारी कड़ियां है, इसकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल प्रिपरेशन और कंज्यूमशन, तो इन सबको हमको बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये वो सारी कड़ियां है, वापस मैं आऊंगा। सबसे पहले तो खेत कि जहां पर ये अन्न बनाया जाता है, दूसरा ये जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी इस अन्न को किस तरह से प्रभावित करता है, और जो भी गाड़ियां और जिससे जो प्रदूषण, जो धूल, उससे जो धुआं निकलता है उससे भी क्या क्या असर होता है, सबसे पहली कड़ी यहाँ पर है। उसके बाद में जो खेत है, उसके बाद जो पशुधन है या समुद्री जो अन्न है, और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद में प्रसंस्करण जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं या स्टोरेज होता है, फिर ये फुटकर व्यापारियों के पास आता है, रिटेलर्स के पास, और उसको बनाया जाता है और फिर हम खाते हैं उसको। तो ये सारा जो ये जो श्रृंखला है इसमें अगर कहीं पर भी कोई भी अगर प्रदूषण होता है तो उससे सीधा हमारे स्वास्थ्य, हमारे सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड इमिशंस, जो ये जो इंडस्ट्रीज है उससे जो जो विषैली जो गैसेस उत्सर्जित होती है और जो भी उससे जो गंदगी उससे निकलती है उससे सीधा कनेक्शन है। इसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और जो कि हवा में ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप हो जाने की वजह से जो भूमंडल का वातावरण, जो ऊष्मा है जिसको वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो और बढ़ती है, और उसके वजह से धरती का तापमान जो है वो बढ़ते जाता है, और उसके वजह से जो बहुत सारी खतरे जो हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध से भी वो खतरनाक होगा अगर ये होता है। तो 1900 से 2000 तक अगर देखा जाए तो धरती के तापमान में 1 डिग्री बढ़ा है, तो उसका भी मुख्य एक कारण ये है। दूसरा एक है वो जमीन का प्रदूषण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें। फिर है वायु का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, तो ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट से जुड़े हुए हैं। फिर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अभी देखो, अगर आप देखें कि जो खाना हमारी थाली में आ रहा है वो कहाँ बना, और हमें हम इसके बारे में सोचते नहीं कि उसको बनाते समय जो किसान है उसने किस तरह के केमिकल्स उसमें मिलाए हैं। कहते हैं कि कई अलग अलग प्रकार की खेती होती है, जैसे किसी जमाने में जिसको सतयुग कहते थे वहां पर सात्विक खेती होती थी जहां कोई केमिकल्स मिलाया नहीं जाता था, कोई भी कीटनाशक या जंतुनाशक मिलाया नहीं जाता था। एक होता है सेंद्रीय खेती, एक होती है रासायनिक खेती, और अभी जो रिसेंट एक कॉन्सेप्ट जो निकला है वो है ऑर्गेनिक जैविक खेती का। और जो लेटेस्ट जो कि उसके बारे में बताऊंगा, अगर मनीषा बहन यहाँ है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे मुख्य जो कड़ी है इस खाने बनाने की वो है किसान। तो किसान का जीवन और उसके बारे में हम थोड़ा गहराई से अगर स्टडी करें तो हमको पता चलेगा कि ये जो किसान है वो किस तरह से अपनी जिंदगी को जीता है और उसको किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी समय ऐसा है कि वो कितने सारे उसको कीटनाशक उसमें मिलाने पड़ते हैं, और कीटनाशकों की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा है कि वो धीरे धीरे कर्जदार होता है, और आपने सुना होगा कि आत्महत्या की संख्या भी इनमें कितनी बढ़ गई है। हम एक उदाहरण यहाँ लेंगे तीन फार्मर्स के बारे में, सीधा किसान के मुख से सुनेंगे।
अंगूर देश भर में मशहूर है, ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा।
छह साल पहले मैं छड़े हुए थे, उस टाइम अंगूर का सीजन था, तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने पेड़ खेती का अंगूर खरीद बंद कर दिया। मेरे अंगूर के छड़े बिगड़ दवा वो अच्छे हो गए। इससे साइड ले रहा हूँ तो इससे बाइट कर रहे तो काला डाल है। यहाँ पर जब आता है देखता है इसमें बंश में काले डाल है तो बहुत गिरा रहता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। वो हमें मालूम है क्वालिटी खरे दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन चांस हो जाता है, इसलिए खरी व्यापारिक पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग से जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगे हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं।
फिरोजपुर पंजाब की सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं।
ये दवाइयाँ जो फार्मर तक लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती है, तो वो पॉइजनिंग में आना ये है। मैं अपने खेत के अंदर जो है इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है उसका असर ना आए।
वलसाड गुजरात के निलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं।
मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा वो ड्रम एक साल तक उस स्मेल इसमें रहती है, तो वो जो ड्रम है प्लास्टिक का तो आदमी पे तो असर हो ही आएगा उसका। घर के बारी में नहीं डालते है और बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं वो माल, हम हमारे रिश्तेदारी में ही देते हैं और जो प्रमोशन आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में कोई भी वस्तु दिखाव के चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो कोई सुनता नहीं है।
तो आपने देखा ये केवल इन तीन किसानों की बात नहीं है, ये तो खाली उदाहरण है कि जो खुद तो कोई भी कीटनाशक नहीं डालते, वो दो फसल दो प्रकार की फसल कर उगाते हैं, एक जो है जिसमें कीटनाशक डालते हैं वो बेचते हैं और दूसरी खुद के लिए। तो ये बहुत सारे इसके ऊपर स्टडीज हुई है पेस्टिसाइड्स के ऊपर, जिसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आर नोन एज परमानेंट परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स, कि जो कि खाने में लगभग 20-25 साल तक रहते हैं, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स है वो कार्सिनोजेनिक है, कुछ पेस्टिसाइड्स है वो टेराटोजेनिक है। तो इस तरह से ये बहुत एक खतरनाक चीज है। तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? जैसे मैंने कहा जैविक खेती, ये आज एक नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है सब जगह जैविक खेती, कि कई अलग अलग प्रकार के ऐसे तरीके अपनाए गए हैं कि जिस वजह से बिना इन जंतुनाशक या कीटनाशक या रसायनों का प्रयोग किए भी खेती को उगाया जा सकता है। और इसका एक प्रयोग जो किया हुआ है वो, अगर मनीषा बहन यहाँ है तो जो इसकी पॉइनियर है जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से हुआ है वो शाश्वत यौगिक खेती। ये जैविक खेती जैसा नहीं है परंतु इसे कहा जाता है शाश्वत यौगिक खेती। इसमें इसकी जो शुरुआत है वो संकल्पों के द्वारा है, जो किसान है वो किस तरह से अपने खेत में मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन करके कैसे वो अपने प्रकंपन या वाइब्रेशंस देकर उस अन्न को और मतलब पवित्र और शुद्ध प्रकंपन प्रदान करता है, जिससे वो अन्न और ही सात्विक बनता है। हम देखेंगे यहाँ पर इस एक शॉर्ट
वीडियो के भाई किए हैं मैंने लाख जतन, फिर भी तेरे जैसी फसल नहीं आई, अब तुम ही मुझे बताओ क्या है इसका राज।
अरे भाई ये सब तो साथ अभी खेती का कमाल है ना।
ये कौन सा फार्मिंग है भाई, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं।
अरे भाई मकरमा ये तो बड़ी आसान खेती है, पहले हम भगवान की याद से बीज को शक्तिशाली बनावत है, फिर उन बीज को ईश्वर की याद में धरती में बोवत है,
फिर
गोबर का जीवामृत और जैविक खाद डालत है भाई,
फिर
अरे फसल को कीट से बचाने के लिए नीम और गोमूत्र का छिड़काव भी करते भाई। पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात ये है कि भगवान की याद में बैठ के फसल को खूब शुभकामनाएं देते हैं। पौधे भी तो प्यार मांगते हैं ना भाई की जहरीली खाद,
पागल हो गए हो का? हाउ इज दिस पॉसिबल?
अरे भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं अकेला नहीं हूँ, हजार किसान भाई लोग जो है यही विधि से खेती का सफल प्रयोग कर रहे हैं। जरा यह फल तो चख के देख।
अरे वाह, ऐसा टेस्टी फ्रूट वाला तो हम अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया हूँ भाई। अब तो हम भी शाश्वत योगी खेती को ही अपनाऊंगा। खर्चा कम, मेहनत भी कम और शुद्ध मन से उपजे शुद्ध अन्न। हम भी मेडिटेशन करूंगा, हम भी अब ऐसा ही खेती करूंगा।
नए युग के लिए नई खेती, ये शाश्वत योगी खेती।
तो आपने देखा कि किस तरह से एक नई खेती, और हमारे साथ में मनीषा बहन यहाँ पर है कि ये जो खेती की जो शुरुआत की है ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसके बारे में। इन्होंने कोल्हापुर में ये स्टार्ट की, पूरे महाराष्ट्र में और फिर पूरे गुजरात में, और आज तो देश के कई जगह पर ये जाते हैं, प्रवचन करते हैं और योगी खेती के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। तो अभी तो समय का अभाव है, या आप उनसे बाद में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो इस ये राजस्थान में किए हुए सारे सम्मेलन है कि कितने लोग इसमें क्यों लाभ लिया, बहुत सारे सरपंच की सभा और ये सब करते रहते हैं। ये सारे आंकड़े हैं इसके बारे में जो कि युवा प्रभाग की ओर से होते रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ तो चैलेंजेस है, जैसे कि इन्फेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं वो इस बीमारी के बारे में, उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। दूसरा, कंटामिनेटेड जो फूड है, जो प्रदूषित जो अन्न है, वो वैसे ही लगता है जैसे कि नॉर्मल, टेस्ट भी वैसा ही होता है, इसके लिए ये और मुश्किल हो जाती है। और बहुत सारी अभी ऐसे कुछ कीटाणु है कि जो जिस प्रकार से हम खाना बनाते हैं, जो टेक्निक्स हमारी है, उसको भी वो सर्वाइव कर जाते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हम अभी और कुछ फूड स्टैंडर्ड्स है जिसको कि WHO का इस समय का जो लक्ष्य है कि ये जो अन्न के बारे में जो मानक बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड बने हैं, उन्हें और बेहतर किया जाए। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर ये तीन मानक, जो एक तो एक्ट है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो 2005 में बनी, फिर है इन्फोस्कैन और कोडस एलिमेंटेरियस। हम ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के बारे में, हम देखेंगे भारत में क्या है इसके बारे में। आपने देखा होगा बहुत से फूड पैकेट्स होते हैं, उसमें एक चीज लिखी रहती है ऑलमोस्ट FSSAI। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहेंगे एक्ट है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो अधिनियम बना 2006 में, उसके तहत ये इसकी एपेक्स अथॉरिटी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो भी फूड सेफ्टी के बारे में जितने नियम है उसको और बेहतर तरीके से क्या किया जाए, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके साथ इसका समन्वय कैसे हो, और उसका दूसरे जो क्षेत्र है उसके साथ में इसको कैसे सहयोग दे, और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने कहा कि कंज्यूमर इज द एंड यूजर, उस जो अंतिम कड़ी है उसको प्रशिक्षित किस तरह किया जाए और उसकी जागृति कैसे लाया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन इसके बारे में। तो ये उसका हेल्पलाइन है। इस तरह का अगर कोई है तो कोई भी पैकेट, चाहे चिप्स का पैकेट या अगर यहाँ लिखा है, तो उसके बीच में उसके साथ में एक लाइसेंस नंबर भी लिखा रहता है। तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नाम से ये जाना जाता है हिंदी में। इसने बहुत सारे, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी चैनल्स देखो तो हर दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में आते रहता है कि किस तरह से जो लेबल्स है वो अगर गलत लगाए जाए, वो लेबल्स में जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर गलत दिखाए जाए, तो इन सबके लिए ये कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। और ऐसे कुछ अपराध है जो दंडनीय अपराध है। तो हम यहाँ देखेंगे एक शॉर्ट
विज्ञापन में ड्रामा जावे के आरोपों को लेकर ऑडिट बॉडिका कॉम्प्लान कैलास और कोरोना जैसी 19 ब्रांड बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेज रहे हैं। इस मामले में सरकार ने संसद को जानकारी दी है। सरकार को संसद की जानकारी दी है कि विज्ञापन में ड्रामा जावे के आरोपों को लेकर ऑडिट बॉडिका कॉम्प्लान बिस्किट कैलास सकोला जैसी 19 ब्रांड बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि खाने पीने की चीजों के मानक पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने इन कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या विज्ञापन में दिए गए दावों को सच साबित करने के लिए उनके पास सबूत हैं। इन कंपनियों का जवाब मिलने के बाद उन पर कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
उसके बाद में बहुत सारे और इश्यूज है जो सामने आ रहे हैं, वो है मिलावट। और बहुत सारे यूजेस ऑफ एडिटिव्स। उसके बाद में स्ट्रीट फूड के बारे में मैंने आपको बताया, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे कि ये जो फूड एडिटिव्स है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फूड में मिलाई जाती है। कौन कौन सी वो चीजें हैं और वो किस तरह से बहुत सारे प्रयोग हुए उनको, उनमें से ये पता चला है कि इसमें से बहुत सारे एक लंबे समय के बाद हानिकारक होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कभी एसिड बनाने के लिए डाली जाती है, एसिड को रेगुलेट करने के लिए कुछ एजेंट्स डाले जाते हैं, या कुछ जो चिपे होते हैं पदार्थ, एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, कभी एंटी फोमिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की बहुत सारी चीजें, जैसे कि रंग वर्धक कुछ है, कोई रूप वर्धक है, तो कोई स्वाद वर्धक है, बल्किंग एजेंट्स है, कुछ रिटेन करने वाले उन कलरों को जो डाला हुआ है, कुछ इमल्सिफायर्स है। तो ये सब चीजें हम जो खाना खाते हैं या जो खरीदते हैं उसमें ये सब मिली हुई होती है। तो खाने को सुखाने वाले कुछ होते हैं, कुछ ग्लेजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट होते हैं, फ्लेवर वाले होते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं, कुछ स्टेबिलाइजर्स, स्वीटनर्स, थिकर्स, प्रिजर्वेटिव, स्ट्रेसर्स, तो इतनी सारी चीजें उसमें मिली हुई होती है। तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे मिल्क की मिलावट के बारे में, जो कि रिसेंटली एक जगह हुई।
क्या आपके बच्चे दूध से गंध की बात करते हैं? क्या आपको भी अपने घर के दूध पर शक होता है? तो सावधान, क्योंकि सफेद दूध पर भारत सरकार ने खुद किया है सनसनीखेज खुलासा। ये रिपोर्ट कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में दूध मिलावटी है। हर घर में आने वाले दूध में जहर है। हर बच्चे को कभी न कभी पीना पड़ रहा है नकली दूध।
अब तक आपने दूध से जुड़ी कई खबरें और रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन आज उन सारी रिपोर्ट्स को भूल जाने का वक्त है, क्योंकि भारत सरकार की संस्था ने कर दिया है ऐसा खुलासा जिससे अच्छे अच्छे के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भारत का नाम बदनाम हो जाएगा। इससे पहले कि हम कुछ और बातें आपको बताएं या सवाल उठाएं, आप ये रिपोर्ट देखिए जो आपको दूध के भयानक रूप से रूबरू कराएगी।
ये सफेद दूध आज तक हिंदुस्तान की शान था, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा दूध भारत में पैदा होता है। लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया कि सफेद दूध में जहर मिला है और भारत का 68.4% दूध मिलावटी है। जी हाँ, ये सब में कर देने वाला खुलासा मीडिया या फिर किसी प्राइवेट संस्थान का नहीं, भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने हलफनामे में कहा है देश में 68.4% दूध मिलावटी है। साल 2011 में 33 राज्यों से लिए गए दूध के सैंपल की जांच के बाद यह आंकड़ा सामने आया। 33 राज्यों के शहरों और गांव से 1,791 नमूने इकट्ठा किए गए, इनमें से 1,226 यानी 68.4% नमूनों में मिलावट की बात सामने आई। सिर्फ 565 नमूने यानी 31.5% नमूने ही सही पाए गए। जांच के नतीजे में यह भी सामने आया कि गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा मिलावट है। गांव में 31% दूध मिलावटी पाया गया, जबकि शहर में मिलावट की दर 68.9% पाई गई। सुना आपने, यानी अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको और ज्यादा चौकन्ना हो जाने की जरूरत है।
ये
दूसरा सुना होगा आपने, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है 2013 में भारत भर में, बिहार में, कलकत्ता में, राजस्थान में और साउथ में भी कई जगह पर इसके बारे में फूड पॉइजनिंग की केसेस सामने आए।
फर्श पर लेटे ही बच्चे मिड डे मील के तहत खाना खाने के बाद बीमार हो गए, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जिसमें एक छात्रा के इलाज के दौरान की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को खाने में लाई और छोले खाने को दिए गए, जिसके खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान अर्चना नाम की एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना ने सरकारी स्कूलों में बन रहे मिड डे मील में खाने के रखरखाव और साफ सफाई की पोल खोलकर रख दी है।
तो आपने देखा कि इस चेन में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, मिलावट से लेके तो फूड एडिटिव से लेके तो खेतों से लेके। तो हमें क्या करना चाहिए, की मैसेजेस फॉर द पॉलिसी मेकर्स, कि ये जो एक तो है कस्टमर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स क्या करे। तो इनके ऊपर एक तो ये जैसे मैं कहूंगा राजनीतिक जिम्मेवारी है इस अन्न की सुरक्षा की, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाए और जिसमें फूड सेफ्टी को इंक्लूड किया जाए, जिनका एक स्लोगन है थिंक ग्लोबली पर एक्ट लोकली। विश्व के लिए सोचना है, पर एट द ग्रास रूट लेवल एवरीबडी हैज टू वर्क. तो मेंटेन एडिक्वेट फूड सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और इंटरनेशनल अगर फूड इमरजेंसीज कुछ होती है तो इंटरनेशनल जो संस्थान है इन्फोस्कैन, इनके साथ में समन्वय रखकर उनके ऊपर कुछ समस्याओं का हल निकाला जाए. क्योंकि एक और चीज है कि एक शहर में, एक गांव में, एक देश में बना हुआ अन्न दूसरे देश में जाता है, तो जरूरी है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फूड सेफ्टी सिस्टम एक कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि दैट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द सेफ्टी ऑफ फूड इन अदर कंट्रीज. उसके बाद में कंज्यूमर, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बार WHO ने 5 keys दी है अन्न के बारे में, वो हमको जानना बहुत जरूरी है. कंज्यूमर्स के लिए जब भी आप कुछ भी चीजें खरीदने जाते हो तो जो भी पैकेट होता है उसके ऊपर एक लेबल होता है, उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं. उस लेबल में उस अन्न के बारे में सब कुछ जानकारी वहां पर होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट FSSAI का स्टैंप है या नहीं, इसको जानना बहुत जरूरी है. और बहुत सारे, अगर आप कोई चीज को, कोई चीज से आपको एलर्जी है वो उसमें है या नहीं उसको पढ़ना, और उसको किस टेम्परेचर में रखना. तो फेमिलराइज योर सेल्फ, जो भी अगर आपके एरिया में आपको लगता है कि कोई चीज से हो सकता है कि ये खतरनाक चीज है और वो उस अन्न में है तो उसको हम ना खरीदे. तो इस बारे में ये सब बहुत जरूरी है, इस लेबल्स को पढ़ना. ये जो 5 keys मैं जो कह रहा था कि अन्न को सबसे पहले तो साफ करें, उसको अलग करें, उसको अच्छी तरह से पकाए और उसको फिर ठंडा करें, और लास्ट में है यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, इसको हम देखेंगे. सबसे पहला है कि जहां हम खाना बनाते हैं, जैसे कि ड्रामा में ये स्किट में भी बताया बहुत अच्छी तरह से कि क्लीन सरफेस होना चाहिए, हाथ वॉश करने चाहिए, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए. खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के समय भी, बीच बीच में अगर हो सके तो, और खाना बनाने के बाद, और खाना बनाते समय छींकना, खांसना या फिर खुजली करना, ये सब चीजें हमको नहीं करनी है. तो सबसे पहले है क्लीन, मतलब साफ, फिर है अलग करना जो पका हुआ भोजन है और जो पका हुआ भोजन नहीं है, उनको अलग अलग रखना, ये बहुत जरूरी है. नॉनवेज के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद है अच्छी तरह से उसको कुक करना, उसके बाद है उसको ठंडा करना. अभी जो WHO ने कहा है कि 2 घंटे से ज्यादा खाना बनने के बाद उसे सामान्य टेम्परेचर पर नहीं रखा जाए, 2 घंटे के अंदर उसे फ्रिज में रखा जाए. तो साफ करना, अलग करना, खाना पकाना और ठंडा करना. हम एक शॉर्ट 2 मिनट्स, 1 मिनट कर लेंगे.
साफ करना, अलग करना, पकाना और ठंडा करना. साफ करना, अपनी रसोई और बर्तनों को साफ करना आसान लगता है, लेकिन यदि सफाई ठीक से ना हो तो बैक्टीरिया बन सकते हैं जिससे भोजन का संदूषण हो सकता है. किसी भी खाद्य पदार्थ को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को 20 सेकंड तक धुलने और साबुन वाले पानी से धोएं. इसमें आपके हाथों के पिछले हिस्से, उंगलियों के बीच में और नाखूनों की सफाई शामिल है. सभी बर्तनों, कपों और कटिंग बोर्ड को गर्म साबुन वाले पानी या डिटर्जेंट से धोएं. बैक्टीरिया से प्रभावी ढंग से छुटकारा पाने के लिए सभी स्पंजों को कम से कम आधे घंटे के लिए डिटर्जेंट के घोल में भिगोकर संग्रहित करें. याद रखें, यदि आपके बर्तन पोंछने के कपड़े में गंध आती है तो उसे तुरंत फेंक दें. फलों और सब्जियों का उपयोग करने से पहले उन्हें नल के बहते ठंडे पानी से धो लें, भले ही आप उन्हें छीनने वाले हों. यदि आप घरेलू डिटर्जेंट तैयार करना चाहते हैं तो बस 1 कप सिरका क्रीम का पानी में मिलाएं. अलग करना, खाद्य पदार्थों को अलग करना आवश्यक होता है क्योंकि ये कच्चे खाद्य पदार्थों की सैल्मोनेला और ईकोलाई जैसे बैक्टीरिया के सदस्यों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों तक फैलने से रोकता है. अपनी खरीदारी वाली थैली और फ्रिज में मीट, पोल्ट्री, सामुद्रिक आहार और अंडों को अन्य खाद्य पदार्थों से अलग रखें. मीट, फलों और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप अलग अलग रंग के कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको अलग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना है. अन्नों को उनकी क्रेट में लगाकर रेफ्रिजरेटर के शेल्फ में रखें, दरवाजे के लिए. फ्रिज के दरवाजे का तापमान अधिक होता है और दरवाजे को लगातार खोलने बंद करने से तापमान कम ज्यादा होता रहता है जिससे अन्नों की ताजगी पर असर पड़ता है. पकाना, भोजन पकाना आपको सहज प्रतीत हो सकता है लेकिन आपका भोजन पक है या नहीं ये जानने के लिए अपनी सामान्य बुद्धि पर भरोसा करना सबसे सुरक्षित तरीका नहीं होगा. अधपके भोजन में बैक्टीरिया होते हैं और उसका केवल एक और खाने से भी खतरा है. भोजन को उचित और सुरक्षित तापमान पर पकाएं। मीट और पोल्ट्री के उचित ढंग से पकने का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस, मछली के लिए 63 डिग्री सेल्सियस और अंडों के लिए 71 डिग्री सेल्सियस है। अपने भोजन के आंतरिक तापमान को मापने के लिए फूड थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। मीट के सबसे मोटे हिस्से में थर्मामीटर लगाने से सबसे सटीक तापमान का पता चलता है। ठंडा करना। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तुरंत और सही तापमान पर फ्रिज में ना रखा जाए तो उनमें बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया पनप सकते हैं। बैक्टीरिया में 4 और 7 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच बढ़ोतरी होती है। खाद्य पदार्थ खरीदने के 2 घंटे के भीतर फ्रिज में नहीं रखा जाता तो इसकी संभावना अधिक होती है। आपके फ्रिज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सेट होना चाहिए और आपके फ्रीजर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर सेट होना चाहिए। फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखे किसी भी खाद्य पदार्थ के खराब होने का संदेह होने पर उसे निकाल कर फेंक दें। इसमें संदूषण का खतरा है जो आपको नहीं उठाना चाहिए। याद रखें, जब संदेह हो तो फेंक दें। फ्रीजर में नए खाद्य पदार्थ को रखने हो तो हर बार पुराने खाद्य पदार्थों को सामने रखें और नए खाद्य पदार्थों को पीछे की तरफ रखें। साफ करने, अलग करने, पकाने और ठंडे।
कुछ बातें लास्ट में एक दो स्लाइड्स और है कि जनरल सैनिटरी मेजर्स ये दोनों के लिए कि जहाँ पर भी खाना बनाया जाता है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और हवा का संचार जो है वो भी बहुत अच्छा वहाँ पर होना चाहिए, तो ओवरऑल हाइजीन्स होनी चाहिए। और दूसरे जो भी खिड़की दरवाजे हैं या ओपनिंग्स है वहाँ पर स्क्रीन या नेट लगी हो, पानी जो यूज किया जाता है वो पेय हो और जो भी उपकरण या सामग्री यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो ऐसे हो कि जिससे कि आसानी से उनको क्लीन किया जाए, और जो भी बाकी यूटेंसिल्स है आपका काम हो गया उसके बाद में उसे अच्छी तरह से धो के साफ करके सुखा कर और उसको अपनी जगह पर ठीक से रखा जाए। और हर प्रिमाइसेस जहां पर खाना बनाया जाता है एक इफिशियंट एक निष्कासित एक इफिशियंट ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए भी जगह होनी चाहिए। और जो भी काम करने वाले जो लोग हैं फूड हैंडलर्स मेनली, उनका तो अभी कहा जाता है जो नियम बने हैं कि हर सालाना एक बार उनका फुल बॉडी टेस्ट होना चाहिए, उसमें स्किन एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट, ये सब चीजें इंक्लूड की जाती है। तो इनका भी एप्रन क्लीन होना चाहिए, हैंड ग्लव्स यूज करना चाहिए, हेड वेयर्स यूज करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको किचन में एंट्री नहीं अलाउड है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि भारत में जो खाना बनाने वाले लोग थे उनको महाराज कहा जाता था, महाराज कहते हैं, तो ये महाराज अर्थात कि जो उनका जो अलग प्रकार से एक ड्रेस होता था जब भोजन बनाने जाते थे उनको स्वयं पाकी भी कहते थे। स्वयं पाक अर्थात जो खुद अपना भोजन बनाते, तो कितनी स्वच्छता का उसमें पालन किया जाता है। और ये भी आपने सुना होगा कि इसको चौका कहा जाता है भारत में, रसोई या चौका। चौका अर्थात उसमें 4 बातें हैं कि जो अन्न बन रहा है वो किस पैसे से आ रहा है, जो बनाने वाला है वो कितनी साफ सुथरे रीति से भोजन को बना रहा है, जो भोजन खाने वाला है किन विचारों से खा रहा है, जो भोजन बना रहा है किस विचारों के साथ संकल्पों के साथ भोजन बना रहा है। तो ये चारों ही चीजें उसमें इंक्लूडेड है, तो उसको इसलिए चौका कहा जाता था। तो ये जो भी लोग हैं कि जिनको किसी भी प्रकार की बीमारियां है या वुंड्स है, कट्स है, तो इसको कवर्ड रखे जाए और उनको किचन में अलाउड ना किया जाए या डायरेक्ट फूड के कॉन्टेक्ट में ना आए। जो भी फूड हैंडलर्स है उनके नाखून साफ हो, उसके बाद में बार बार हाथों को धोना है, और स्क्रैचिंग ऑफ बॉडी पार्ट जैसे कि वो स्किट में भी बताया वो सब वहां नहीं करना है। और खाना बनाने समय स्मोकिंग करना, ईटिंग, चीविंग, नाक साफ करना, ब्लोइंग, ये सब चीजें वर्जित है। ऑल फूड शुड बी कवर्ड नेट या इससे। अब लास्ट जो स्लाइड है वो है जीएम फूड्स के बारे में, जो कि चारों ओर इसके बारे में चर्चा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की जो फसल है उनको कुछ इंजेक्शन के द्वारा उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से उसको चेंज किया जाता है, और उसके बाद में ये जो उसका टेस्ट बदल जाता है वो और सुंदर बन जाते हैं और टेस्टी बन जाते हैं। परंतु इसके बाद ये एक न्यूज़पेपर में जो आया था बहुत अच्छी चीज है कि राजस्थान में एक बहुत अच्छा कदम जो लिया गया है कि भारत की जो जलवायु है, जिस प्रकार का वातावरण है, वहां पर इस प्रकार के जो अन्न है वो अलाउड नहीं है, या फिर हमारे भारतीय जो लोग हैं इनके प्रकृति के विरुद्ध है। तो इसके लिए राजस्थान के कृषि मंत्री ने भी कहा कि हम पहले से ही जीएम ट्रायल का विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है। हमने केंद्र को भी इस स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की तरह मपरों की तरह जीएम स्टेट फ्री घोषित मध्य प्रदेश की तरह घोषित किया जाए, इस बारे में विभिन्न संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही है। तो राजस्थान, मुझे नहीं लगता राजस्थान में अभी इस समय जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहीं पर यूज किया जा रहा है, तो ये भी उसमें कड़ी है। और इसी के साथ में संपूर्ण ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, आप सबकी सेहत के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सब यहाँ आए और जितना हो सके मैंने इस प्रेजेंटेशन में जितनी बातें WHO से लेकर जितनी डालनी चाहिए, जितनी इससे जुड़ी है, वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है पर संक्षिप्त में जितना हो सका सब कुछ डालने की इसमें कोशिश की है। इसके साथ मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ और आप सबके लिए अंतिम ये प्रार्थना। हल्दर भाई अभी है, उन्होंने एक छोटा सा एक कविता लिखी है या गीत लिखा है, अगर वो है यहाँ। हाँ हल्दर भाई, हॉकर्स की जैसे डॉक्टर विमल ने बात की हॉकर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैंने एक जगह पढ़ा कि मुंबई में लगभग 2 लाख से अधिक हॉकर्स हैं, परंतु उसमें से केवल 14,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ओनली 14,000, बाकी तो सारे ऐसे ही है विदाउट रजिस्ट्रेशन।